نفس بھی ہے اور بہت سارے اس کے جو सेक्टर्स हैं वो इसके अंदर आते हैं और उन्हें एनिमी कंपास करता है।
लिहाजा फकत लड़ने मरने कतार और हरफ को
जहाज का नाम नहीं दिया गया न दिया जा सकता है।
सूरह तौबा में अब देखिए मुसलमानों के ताल्लुक से अगर कताल हरफ लड़ाई और जहाज की बात की जाए तो उनको उन्होंने आपस में भी लड़ाइयां लड़ी उसे भी जहाज कह दिया, गैर मुस्लिमों से लड़े उसे भी जहाज कह दिया, तख्त की लड़ाइयां हुई उसे भी जहाज का नाम दे दिया। कुरान मजीद ने कताल को गैर मुस्लिमों से काफिरों से पहले खिताब से बड़े रेजिमेंटेड और बहुत ही सलीके की गुफ्तगू से बयान किया और उसमें खुली छूट नहीं दी, जैसा कि सूरह तौबा में शामिल है वकातिलुल लजीना ला युमिनू बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व ला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु व ला यदीनूना दीनल हक من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون سورة توبہ۔ یہ آیات ہیں ان لوگوں کے لیے ان سے قتال اور حرب کے لیے جو اہل کتاب ہیں۔ وقاتل الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ولا يحرمون الله ورسوله ما حرم الله ورسوله۔ قتال کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیے ان لوگوں سے کن سے؟ لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر، یہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو روزے آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، قابل احترام نہیں سمجھتے ان باتوں کو جن کے احترام کا اللہ نے حکم دیا جن کے احترام کا رسول نے حکم دیا۔ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور کتاب آ گئی دین حق بھی ان کے پاس ہے اس کے باوجود بھی وہ سچائی اور کتاب کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ حتی یؤتوا عن الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں، وهم صاغرون اور بہت چھوٹے کر دیے جائیں۔ ہو گیا لفظی مطلب۔ اب ذرا ان آیات کے مفہوم پر غور کریں، کن کے پاس تھی کتاب؟ یقینی باتیں اندھے کتاب کے پاس تھی، عیسائیوں کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، مجوسی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ بھی کسی نبی پر اتری، مطلب اہل کتاب تو ہے نا بہت سارے۔ اب ان آیات میں کیا یہ کہہ دیا گیا کہ جہاں آپ کا دل چاہے اہل کتاب سے لڑنے مرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ جو اللہ اس کے اللہ پر اور روزے آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جو حرمت ہے ان باتوں کی حرمت پر جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے محترم قرار دیا ان کی حرمت پر یقین نہیں رکھتے، جو کتاب اور دین حق پر یقین نہیں رکھتے ان کے ساتھ لڑائی اور قتال نہیں کرتے۔ اب یہاں آیات کی مفہوم سے کم از کم چار سوال نکلتے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تمام اہل کتاب سے لڑنا جائز ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کیا اہل کتاب سے لڑائی کا حکم قرآن مجید نے ایبسلوٹ دیا، مطلق دیا یا کنڈیشنل دیا؟ तीसरा सवाल ये है जल्दी का क्या मतलब है, और चौथा सवाल ये है सावरून किसे कहते हैं। ये बहुत बड़ा मसामी है और कोशिश होगी कि मैं सवारी में इन बातों को जवाब आपके समाज के पेश नजर कर सकूँ और तसल्ली बख्श इन बातों पर गुफ्तगू हो सके। सबसे पहला सवाल अहले किताब से लड़ाई को क्या कुरान मजीद ने एब्सोल्यूट यानी मुतलक कहा या कंडीशनल कहा। अगर हम इन्हीं सूरह तौबा की आयात पर गौर करें तो ये नहीं कहा कि बस अहले किताब से लड़ने के लिए कतार करने और हरफ करने के लिए खड़े हो जाओ, किससे लड़ाई होनी चाहिए कंडीशन जो ला युमिनूना बिल्लाह व बिल्यौमिल आखिर, उनका अल्लाह पर एतबार ना हो और उसे आखिर पर यकीन न रखते हो। इसका क्या मतलब है अल्लाह पर एतबार ना हो और उसे आखिर पर यकीन न रखते हो? इसका मतलब यह है कि अल्लाह के निजाम जो इंसान दोस्ती पर मबनी है उस निजाम पर यकीन न रखते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है अकाउंटेबिलिटी का उनके जहन में कोई तसव्वुर ना हो कि हमारी कहीं पकड़ होगी, कहीं पूछ होगी, कहीं हम जवाब दे हैं, यानी वो अपने आप को एब्सोल्यूट अथॉरिटी तसव्वुर करें वो कि उनके हाथ में बाइबल हो, ज़बूर हो, कोई और किताब हो, लेकिन वो इन किताबों की उन सच्ची बातों को न मान पाए। वला युहरमूना मा हरम अल्लाह व रसूलहु, दूसरी कंडीशन यह है कि जिन बातों की हुरमत अल्लाह उसके रसूल ने बताई उनका एहतराम करें। और उन्हें सबसे बड़ा एहतराम क्या सिखाया अल्लाह और उसके रसूल ने? इंसान का एहतराम करें। हकीकत तो यह है कि जिन माशरों में इंसान का एहतराम होता है वही सच के माशरे होते हैं, वही किताब खुदा के माशरे होते हैं, वही अल्लाह के पसंदीदा माशरे होते हैं। और जिन माशरों में इंसान का एहतराम नहीं होता वो माशरे कितने ही मटेरियलिस्टिक तरक्की कर जाए और कितनी उनके अंदर रिलीजियोसिटी की लहरें दौड़ रही हो और कितनी ही उनके अंदर तेल की नहरें बह रही हो, अगर एहतराम इंसानियत ना हो आप यकीन तौर पर मेरी बात समझ रहे हैं। एक तो वैसे ही मैयत का एहतराम, फिर दूसरे हाजी की मैयत का एहतराम, फिर हाजी के लिए ऐसे हालात क्रिएट करना कि वो जान खो बैठे। अब आपने कितना ही मजहब का बुरका पर्दा गिलाफ नारा जितनी भी रिलीजियोसिटी हो, लेकिन अगर उस माशरे के अंदर एहतराम इंसानियत नहीं है तो माशरा वो लोग कताल हरत और लड़ाई करने के काबिल है। ये क्या है कंडीशनैलिटी है, मुतलक को नहीं क्या कमर तोड़ दो। सूरह बकरा में भी एक कंडीशन लगाई गई हरत की कताल की लड़ाई की, युका से उन्हें फीस मिले ना अल्लाह ने युका से देखो फकत उनसे लड़ना जो तुमसे लड़ने के लिए आए, और जब वो तुमसे लड़ने के लिए आए तो जवाबन तुम लड़ाई अख्तियार करना, ये नहीं कि तुम दौड़ पड़ो किसी पर हमला करने के लिए। अल्लज़ीना युकातिलूनकुम यानी जो तुमसे लड़ने के लिए, अगर वो तुमसे लड़ने के लिए आ गए और तुमने जवाबन लड़ाई की वला तादरु उसमें हद से न गुजर जाना, जरा कंडीशनैलिटी देखिए हद से न गुजर जाना। अब आप तालिबान पाल रहे हैं, दाइश पाल रहे हैं, न मालूम क्या कुछ पाल रहे हैं, जवान जवान बच्चों की सफ लगाते हैं एक बस से सौ सौ जिंदगियों के शराब को भूल कर देते हैं और आप कहते हैं ये इस्लाम का जहाज है और हम दीन के नाम पर झंडा उस पर लिखा है अल्लाह मोहम्मद। देखिए ये वेस्टेड इंटरेस्ट था और है मुसलमानों में जिसने जहाद और लड़ाई को अहले किताब पर अपने मुखालिफों पर मुख्तलिफ अंदाज से मुसल्लत किया। हम सारी इसकी पुरानी पुरानी बातें बताएं जो बताना भी जरूरी है ताकि मेमोरी रिफ्रेश होती रहे, तो शायद आप मेरी उस बात को जल्दी न कह सक पाएंगे। लेकिन अगर मैं बिल्कुल कंटेम्प्ररी बात आपसे करूं तो आप जल्दी उस साजिश और उस सियासत को पकड़ लेंगे जो जिहाद के नाम पर मुसलमानों के साथ हो गया है। अभी आपके दरवाजे के ऊपर अफगान जिहाद, यही कहा ना, अफगान जिहाद। तो किससे हो रहा था जिहाद? काफिरों से जिहाद। अब रशिया को बना दिया काफिर क्योंकि वो अहले किताब कम्युनिस्ट कंट्री थी, और साथ से कौन मिला आपका अलाई, कौन बना अमेरिका जी, वो अहले किताब है, और अहले किताब तो फिर दोस्त होते हैं, तो वहां सारे अहले किताब दोस्त हो गए, इसलिए कि डॉलर की रेल पे हो रही थी। फिर वो अहले किताब दोस्त हुए और फिर रशिया जो है वो काफिर कुफर की तहरीक चल पड़ी। फिर जब कुफर की तहरीक चल पड़ी तो आपको कुफर से लड़ने के लिए मुजाहिद आए, अल्लाह अकबर। जैसे डिस्ट्रैक्ट हुई है मीनिंग, सारी दुनिया की जेलों से बदतरीन क्रिमिनल्स को इकट्ठा किया गया, सारी दुनिया की जेलों से बदतरीन क्रिमिनल्स इकट्ठे करके लाए गए, और उसके बाद उनको एलिविएट किया मुजरिम के मकान पर, कहा कि ये तो मुजाहिद है तो जहाज लड़ रहा है, और उसके बाद झोंक दिया गया उस लड़ाई में जिस लड़ाई का इस्लाम, दीन, शराफत, मजहब, इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। और लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया? जहाज। और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आपके समझने की बात है कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात, जमात इस्लामी, मुझे कोई खौफ नहीं ये कहते हुए, जो मदर ऑफ ऑल टेररिज्म है, उसने इस कॉन्सेप्ट को, जैसे कहते हैं ना कि पेट में बच्चे को मां का रखना, ऐसे जमात इस्लामी ने इस जहाज के कॉन्सेप्ट को अपने बूम और पेट में रखा, और फिर एक डिलीवरी की जो तारीख के बदतरीन लोग मुजाहिदों की सूरत में इंसानी माशरों पर ऐसे उतरे कि हलाकू खान का लश्कर भी उन्हें देखे तो शर्मा शर्मा जाए। फिर सारा चने खुला इस पाकिस्तान के अच्छे खासे टॉलरेंट माशरे का तब्दील किया गया, और इस तब्दीली का काम दिया गया नोरैड को। नोरैड है नॉर्वेजियन एक एजेंसी, नोरैड। अब पहले तो उन्होंने हमारे करेबला को तब्दील किया, चुन चुन के ऐसी आयात आउट ऑफ कंटेस्ट जिनके अंदर कताल, हरफ और लड़ाई का तस्करा था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या क्या था, उसके पीछे क्या था, उसका मौका क्या था, उसकी नौइयत क्या थी, कुछ नहीं। पतल 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 पतल, मारो 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 मारो। नोरैड ने पूरे उस कैरिकुला को आके तब्दील कर दिया, और उसके बाद जब 35-40 साल में पहले वही 79-78 में ये शुरू हुआ, और आज 2015 है, तो आप खुद गिन लीजिए कितने साल हो गए। तो फिर जब ये पढ़ते 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 तो जहन क्या पैदा किया आपने, आज अगर आपके बेहतरीन इंस्टीट्यूशन के अंदर काफिल पनप रहे हैं तो इसमें हैरान होने की क्या बात है, आप ही ने तो कत्ल का सबक पढ़ाया, आप ही ने तो हुर्म से इंसान को जूते से बिगड़ना बताया। ये सारा वेस्टेड इंटरेस्ट, ये सारे का सारा वेस्टेड इंटरेस्ट था एक लफ्ज पर जिसे कहते हैं जहाज। अब सवाल ही पैदा होता है, क्या जहाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किन पैरामीटर पर होना चाहिए? जहाज और इस्लाम अलग नहीं है, जिहाद इस्लाम के एसेंस है, जिहाद तो होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए और क्या नौइयत होनी चाहिए और क्या उसका तरीका होना चाहिए, तो पहला पैरामीटर है जहाज का, जहाज होना चाहिए लेकिन उन लोगों से जो आपसे लड़ने के लिए आए, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को खतरे में डालें। दूसरा मंजिल पर जहाज वहां पर लाजिम है जहां शरीर है मुखालिफ, ऐसे हालात क्रिएट कर दे जिसे इस्लाम के ट्रू आइडियल्स के फैलने और फूलने और इस्लामी हकीकी इस्लामी माशरे की परवाज और ग्रोथ में वो हिंडरेंस हो, और हकीकी इस्लामी माशरे की क्या पैरामीटर है, बुनियादी पैरामीटर है अदालत और इंसाफ, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। अगर कोई उस राह में हाइल होकर इस्लाम की रूह है आदल, अगर उसको किल करने लगे तो आप उसको बदौरे ताकत रोक। तीसरा पैरामीटर है जहाज का, अगर कोई फरीक है मुखालिफ मुसलमानों या अहले फेथ अहले किताब अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोगों को कमजोर बनाकर उनकी जान इज्जत और आबरू और उनके ड्वेलिंग्स को खतरे में डाल दे, तब उनकी जान को बचाने के लिए आप जहाज के रास्ते को इख्तियार कीजिए। सूरह निसा में इस कॉन्सेप्ट को जितनी खूबसूरत तरीके से बयान किया कुरान मजीद ने, सवाल किया वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़फीन मिनर रिजाल वन निसाए वल वालिदान الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية ظلموا اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا। क्यों नहीं उस पर खड़े होते और कताल हमारा कौन, क्यों नहीं, क्या हुआ, क्या चीज रोक रही है, हमारा कौन लाओ तो काफिर रफी सबीर ना अल्लाह के राह में उठकर लड़ाई लड़ने और कताल करने के लिए, अपनी मर्जी में नहीं, अपनी खुशी में नहीं, अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए नहीं, अपने पेट्रोल डॉलर के लिए नहीं, फिर सभी लेता हमारा खुला सुखा करना फी सभी लेता किसके लिए, खुदा की जमीन में वल मुस्तज़फीना उन कमजोर लोगों के लिए। आज बोर्ड में बैठ के कुरान लोग कभी यमन के कभी शाम के डूब रही हैं कश्तियां, छोटे छोटे बच्चे साहिलों पर लाशें तैरती हुई चली आ रही है, क्या है ये मुस्तज़फीन, कमजोर बना दिए गए अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट वफादार के, वफादार के लिए गैरों ने नहीं मुसलमानों ने, वल मुस्तज़फीन मिनर रिजाल वल निसाए वल वालिदान, वो कमजोर मर्द वो कमजोर बना दी गई औरतें वो कमजोर कर दिए गए बच्चे, उनके लिए उत्तर खड़े होगा हमारा कुमला तो काफी उन्नत की सभी लाला बल मुस्तफीना मिला रजाल बल निसाए बल वाले दाने लदीना यकूलूना रब्बना अखरजना अल्लाहु अकबर, जो पुकार रहे अपने रब को रब्बना अखरजना, इन शहरों से हमें निकाल दे, तो यहाँ पर जालिमों का रिवाज है, वजह लना मिल लू का बलियन किसी को अपनी बारगाह से हमारा मददगार बना दे, वजह लना मिल लू का नसीहा किसी को अपनी तरफ से हमारी मदद के लिए
तो
पुकार रहे। आज आप नहीं देखते मीडिया पर अखबारों में सोशल मीडिया पे, तो फिर क्या हुआ जब कमजोर मुस्तक मर्दों और बच्चों ने पुकारा तो मुसलमान मुल्कों ने अपनी सरहदें बंद कर दी। उन्होंने कहा ये हमारे अंदर आ गए तो मसाइल, कुवैत में ना जाए, कतर में ना जाए, सऊदी अरब ने तो हर मुसीबतें ऊपर डाली हुई, वहां ना जाए। अब दरवाजा किसने खोला? यमन ने दरवाजा खोला, ग्रीस ने दरवाजा खोला, हंगरी ने दरवाजा खोला। अब मेरे दोस्तों मुझे बताओ कि मुझ पर अगर जहाज वाजिब भी है तो किसके खिलाफ वाजिब है? अहले शऊर हैं आप, अहले अकल हैं आप, अहले समझ हैं आप, कुरान आपके सामने है, मुझ पर अगर जहाज है वाजिब तो किसके खिलाफ है? बल मुस्तफीन मिनल रिजाल व निसाए वल वालिदान, जिसने कमजोर कर दिया उन बेगुनाह मर्दों औरतों बच्चों को जो पुकार रहे रबना अफरज में नाजिल पर कहते परवरदिगार निकाल दो हमें खलकों से और हमें अपनी तरफ से कोई बड़ी और अपनी तरफ से कोई मददगार दे, किससे लड़ूं जाकर मैं? यमन से लड़ूं, हंगरी हंगेरियन से लड़ूं, ग्रीक से लड़ूं, किससे लड़ूं? किससे लड़ना चाहिए ये सवाल है। और यहां पर है ये कॉन्सेप्ट ऑफ जहाज, ये नहीं कि किसने रिलीजियोसिटी का एक लिबादा ओढ़ लिया तो वो एब्जॉर्ब हो गया। अगर ये एब्जॉर्ब होना होता तो कभी हुसैन इब्ने अली उठकर ना खड़े होते, एब्जॉर्ब नहीं हुए। 50 साल हुए थे वहां रसूल की रहमत को, ताजे ताजे नए नए कच्चे कच्चे मुसलमान थे। तो जहाज कहां गया जहां कमजोर मर्द औरत बच्चे नजर आए? बदल लना मुल्लतुम का वलीजन, बदल लना मुल्लतुम का नसीला, जो पुकार रहे थे अल्लाह को तो हमें कोई मदद दे, हमें अपनी तरफ से मुश्किल बता दो। तब अहले ईमान को उठकर खड़े होना चाहिए उनको बचाने के लिए। ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह है कि जहाज की नौइयत को, उसके फलसफे को, उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए। और हमने ये देखा कि मगरबी अकाम जो आम तौर पर टॉलरेंट हैं, उन्होंने मुसलमानों के प्रोजेक्टेड जहाज को, देखिए ये तो अफगान जहाज में तो नोराइड आ गई, यूएसएड आ गई, सीआईए आ गई, बहुत सारे लोग आ गए, तो उन्होंने तो बैठी गंगा में सबने हाथ धोए ना। लेकिन उससे पहले भी तो आपका एक जहाज का कॉन्सेप्ट था ना, मंदिर लूटते थे तो कहते थे हम मुजाहिद हैं, मखदूम कौमों की औरतों बच्चों को गुलाम बनाते थे तो कहते हम गाजी हैं। ये टर्मिनोलॉजीज आई ना आज के कल्चर के अंदर, कहीं मुजाहिदों की कहीं गाजियों की। तो इस फलसफे को समझना बहुत जरूरी और बहुत क्रिटिसिज्म तारीख के तवील अरसे में मुसलमानों के इस रॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जहाज पर हुआ, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। और दूसरे अकाम ने यह कहा कि इस्लाम ताकत के जोर पर कन्वर्जन को जहाज का नाम लेके लेजिटिमाइज करता है। ये बात मेरे नौजवान दोस्तों के लिए जो तालीमी इदारों में और प्रोफेशनल जिंदगियों में है, क्या इतराज था क्रिटिसिज्म क्या था कि इस्लाम ताकत तलवार मौत के खौफ में लोगों को मुब्तला करके फोर्स कन्वर्शन को लेजिटिमाइज करता है जहाज के नाम पर। इसलिए कि उन्होंने तारीख में यही देखा कि तलवारें निकली, 10,000 लोग सामने खड़े थे, क्या इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो या उनको मारते जाओ और गोल देखते जाओ, यही हुआ। तो उन्होंने तारीख से यही सबक सीखा। लेकिन बात चूंकि उन्होंने मुसलमानों की हरब लड़ाई और कताल को जहाज समझा, और आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उस लड़ाई कताल और हरब जो मुसलमानों ने 1,500 साल में की उस पर अपने हाथ उठा दें, दिस ओन कर दें, कोई ताल्लुक नहीं हमारा ऐसे कताल हरब और लड़ाई से। हम जिस जहाज पर यकीन करते हैं वो और है, इनकी लड़ाइयां इनके कतार लड़के हरा और हम उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ 1500 साल की तारीख में मुसलमानों ने जितनी लड़ाइयां लड़ी उन्हें डिसोन करते पूरी जिम्मेदारी के साथ डिसोन करते और उन्हें जिहाद की कैटेगरी से बाहर बुलाते। बात यह है कि हम समझें कि जिहाद है क्या, नौयत क्या, उसका टारगेट क्या है, उसका हदफ क्या है। अगर जहाज इसलिए किया जा रहा है कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो, रियासत बड़ी हो जाए, बहुत सारा माल अखबार को लूट कर आ जाए, जब ईरान फटा हुआ था तो इतना माल और दौलत मुसलमानों को मिला था और जो जवाहरात थे उनको गिनतियां नहीं आती थी, उन्हें 10-15-20 के ऊपर गिनती नहीं आती थी, उन्हें समझ में नहीं आता था कि इन चीजों को काउंट कैसे करें। अब इतने फर्टाइल लैंड के लोग, इतने गुलाम, इतनी कमीजें, ये बहुत दूर की बात नहीं है, रहमत नबी के फकत चंद साल की बात है। आप मेरी बात समझ रहे, हम ऐसी तमाम लड़ाइयों को डिसोन करते हैं, किसी ने लड़ी, बहुत सारे लोग हैरान होकर मेरी शक्ल देख रहे हैं, बहुत सारे उनकी मेरी बात समझ में आ गई, जिनकी समझ में आ गई बस उनके लिए काफी, और जिनकी समझ में ना आई उन्हें चाहिए थोड़ा अपनी जनरल नॉलेज मजहब के बारे में से रिफ्रेश, थोड़े दिन हुए थे सुनती रह जाओ ईरान पता हुआ था। फिर क्या हुआ कि मेरे दोस्तों हदफ और टारगेट क्या है, अगर बैठे एक्सपेंशन है, अगर मालो दौलत पर लूटना है, लोगों को गुलाम बनाना है, तब इस्लाम उसे जहाज नहीं कहता, जारियत कहता है, एग्रेशन कहता है, और उसे हर चीज भी लेजिटिमाइज नहीं करता और जहरे को गुनाहगार कहता है, कातिल कहता है। कुरान करीम की एक दो नहीं बहुत सारी आयतें, कम से कम 300+ आयात है जहां पर, लेकिन मुफस्सरीन का मुत्तफ़िका फैसला है कि सबसे पहली आयात जहाज और लड़ाई के रेफरेंस से जो आई वो सूरह हज की आयात, सबसे पहला डिस्कोर्स जहां पर उपकरण नहीं हुआ वो सूरह हज की 38 से लेकर 41 आयत तक हुआ। ये सारी बड़ी इल्मी गुफ्तगू है और इसे आप अपने जहनों में महसूस करना चाहिए, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड ये सारी गुफ्तगू है और इसको ऐसे एब्जॉर्ब करना चाहिए कि इसके बाद के आने वाले मामलात और वाकयात में हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो। सूरह हज अवलीन आयत आयात मौजूए जहां पर इरशाद हुआ, इन अल्लाह युदाफ़िउ अनल्लज़ीना आमनु, इन अल्लाह ला युहिब्बु कुल्लु ख़वानिन कफूर, आया क्या कहा, ان اللہ یدا کے انل مجینا, اللہ پوری طاقت اور قدرت رکھتا ہے صاحبان ایمان کا دفاع کرنے. ان اللہ اللہ یہاں پر کل سمان سفور, اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے ساتھ خیانت کی اور کفر کیا پسند نہیں کرتا. الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم قدير. ہم نے انہیں اجازت دی ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر ظلم ہوا. الذين يقاتلون بأنهم ظلموا ان لوگوں کو ہم نے اذن دیا کہ تم بھی قتال پر آ جاؤ, لڑو, کیونکہ تم مظلوم ہو. اور اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہاری مدد کرے, وہ کرے گا. کون ہے وہ لوگ؟ وہ لوگ ملتی اوپر جو لندے آ رہی بے غیر مقصد, جو اپنے گھروں سے بغیر کسی وجہ کے نکال دیے گئے. کیوں؟ یقول ربنا اللہ, ایک بات پر وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے, اس بات پر نکال دیا. ورن اللہ مسلم لقدیر, اللہ مجھے نصرت کرے گا. بلالا دفع اللہ ناسا بعضهم لبعض, اب ہم نے دفاع کی صورت میں اس بات کا تہیا کیا کہ بعض کو بعض کے مقابلے پر ڈٹا دیں. لولا دفع اللہ ناسا بعض ہوں لے بات لہ مدامت سلام و بیرون و سلام دونوں مساجد ہوں, تاکہ ایک مظلوم گروہ ظالموں کے مد مقابل آئے اور اپنا دفاع کرے. اس دفاع سے گرجے بچے, معبد بچے, سائناگاس بچے, مسجدیں بچے, وہ عبادت گاہیں بچے جن میں اللہ کا کثیر ذکر کیا جاتا ہے. یعنی جہاد صرف مسجد کو بچانے کے لیے نہیں ہوتا, جہاد وہ ہے جہاں گرجا بھی بچے, جہاں سائناگاس بھی بچے, جہاں مندر بھی بچے, جہاں مسجد بھی بچے, جہاں مسجد بھی بچے. وہ ذکر فیہا اسم اللہ کثیرا, ہر وہ مقام جہاں اللہ کا کثیر ذکر کیا جائے اس کا احترام اسلام کے جہاد میں لازمی ہے. تم اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کو قوی اور حکمت والا ہو. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ایگریشن کی, دفاع کی. سارا فلسفہ جو ہے وہ ایگریشن کا ہے, دفاع کا نہیں, صرف دفاع. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ دفاع کرتا ہے ان کا جو ایمان لائے. اللہ دفاع کرتا ہے ان کا جن کو گھروں سے نکالا گیا, اللہ دفاع کرتا ہے ان کو جن کو کمزور بنایا گیا. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ بلو اللہ دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, بعض کو بعض کے ذریعے سے پھر اللہ دفاع کرتا ہے. وہ تو نہیں اتر کے آتا ہے زمین پر, بعض کھڑے ہو جاتے ہیں جہاد کا علم لے کر, اور وہ بعض جو ہوتے ہیں وہ ان بعض کو دفاع کرتے ہیں. جب دفاع کرتے ہیں تو مسجد بچتی ہے, معبد بچتا ہے, مندر بچتا ہے, سانگاہ بچتا ہے, گرجا بچتا ہے, لا الہ الا اللہ بچتا ہے. اگر بات کو بات کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا تو سب چیزیں ختم ہو جاتی. اچھا آخری آیت کیا کہا؟ 41 الذین مکرناہم فی الارض, جب انہوں نے بات کو دفاع کر دیا ان بعض نے, کون تھے وہ؟ مجاہد, جہاد لڑنے والے, اسلام کے جہاد کو سمجھنے والے. ان الذین مکرناہم فی الارض, ہم نے انہیں زمین پر तम गिनत अता थी। क्या किया उन्होंने और उन्हें क्या करना चाहिए? अरे देखो मेरे दोस्तों, यही तो फिल्टर है, ये फिल्टर लगाओ, पता चल जाएगा कितने मुजाहिद थे और कितने जहाद लड़ने वाले थे और बाकी कितने मुजरिम थे जो किसी किसी चीजों की तलाश में मैदान में कूदे। मुजरिमों का और मुजाहिदों का फर्क इस छोटी सी आयत से पता चल जाएगा। इन्ना लजीना अनमकनाहुम फिल अर्ज, जब हमने उन्हें जमीन पर तंग कर बता दी, वकाम सलात व इताई जकात वामरा बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, चार इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कयामे सलात का हक अदा कर दिया, इताई जकात नाफिज कर दी, वामरा बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, ये थे जो मारूफ का परचम लेकर खड़े हुए और ये थे जिन्होंने मुल्की की कमर को तोड़कर रख दिया। वलिल्लाहिल आकिबतुल उमूर, यकीन रखो सारे उमूर अल्लाह ही की तरफ पलट
कर। हबीबे खुदा का कोलंबिया पर जोर है हैदरी सलवा।
अकामत सलात जहां हुआ, इताए ज़कात जहां हुआ, आमर बिल मारूफ के लिए जहां कोई डट गया, नहीं अनल मुनकर के मुकाबले पर कोई उतर कर आ गया, बस वो तो जहाज है और बाकी सब फसाद है। उस खानदान ने अगले खानदान को राउंड कर दिया, राउंड किया, उसका दर्द कलेजा चबा चबा कर भी पूरा ना हुआ। वो बेहतर थी फिर वह तो वो कलेजा चब गया, वो बेहतर चले गए। अब कौन रह गया? अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। और हर पहाड़ पर पैगंबर फौजे मैदान से भाग चुकी, कभी मैदान में जाते हैं, कभी रसूल को देखते हैं, कभी भागे हुए लश्कर को आवाज देते हैं, तलवार टूट जाती है, आप परेशानी है, आ गए या रसूल अल्लाह, अब कैसे होगा जहाद? हौसला करो, हौसला करो मेरे दोस्तों। फसाद करने वालों को इधर उधर से सप्लाई आती है और जहाद करने वाले को आसमान से जाती है जहाद करने वालों की सप्लाई टूट भी करवा दिया। मैंने कहा ये नाजिल हुआ तो हा, जैसे नाजिल होती है वही, जैसे नाजिल होती है किताब, जैसे नाजिल होता है पैगंबर, जैसे नाजिल होती है रहमत, जैसे नाजिल होती है बरकत, ये नुज़ूल की कैफियत है। तो किताब की कैफियत में, वही की कैफियत में, नेमत की कैफियत में, बरकत की कैफियत में कहा वांजल हदीद नाजिल किया हमने दुआ।
امیر المومنین علی نے ابی طالب علیہ السلام پہ بلند کر کر
बात के लिए तो बड़ा शरीफ था वो, लेकिन नास था उसने मुनाफा छुपा हुआ। तो कल मैंने बताया नास, नास के ऊपर कौन? खैरे उम्मत, खैरे उम्मत के ऊपर कौन? पैगंबर। कल की तकरीर अगर आपके जहन में हो, वो मुनाफिकुन लिन्नास, वो खैरे उम्मत की तलवार में ही तुम्हारे लिए मुनाफा है।
पैगंबर ने रसूल से बोला ला फता इल्लाही ला सैद बिल्ला जुल्करार। वो मैदान ओहद था,
क्या था? आसमान से
सुभान अल्लाह
सप्लाई करे।
फिर जिसने जब हुदैबिया से पहले खंदा, कुरान कह रहा है हम तो कुछ नहीं कहते ना, हमारी क्या मजाल, किसी की फजाइल पढ़े, किसी की बकरी, किसी की मुजाहिदियत, किसी के जहाज का तस्करा करे, हमारी क्या मजाल है, हमारी क्या हैसियत है, क्या अकल, क्या शऊर, क्या लफ्ज हमारे पास।
कुरान कह रहा है वो पैगंबर आवाज दे रहे थे, तुम ऐसे बैठे थे, हमें वक्त कम है, वो आया नहीं दोहराऊंगी, ऐसे जैसे तुम्हारे सरों पर परिंदे हैं, तुम हिलोगे तो परिंदे उड़ जाएंगे, हमारे पैगंबर की बात पर तुम्हें एतबार न था।
जहाज वहां होता है जहां पैगंबर पर यकीन काम नहीं, और पैगंबर कह रहे जो जाएगा फतेहमंद होगा, कोई उठने को तैयार है, किसी को यही यकीन नहीं कि पैगंबर सच भी कहते हैं। उठ कर जाने वाले खड़े हो गए, अब बैठ जाओ, ये ना होगा लोग बड़ी जल्दी में अपने ही भाई को आगे कर देते थे, तुम तो बैठो। फिर कहा आओ खड़े हो जाओ, फिर नहीं मिले, फिर वो खड़े होगा तुम बैठो। फिर कहा देखो हम जिम्मेदारी लेते हैं, जो जाएगा फतेहमंद होगा, फिर ना हिले,
वो फिर खड़े हो गए, कहा अच्छा अब तो तुम ही जाओ,
चले चले, खेमे से बाहर निकले। सुनने वाली आंखों ने, कानों ने सुना, पैगंबर ने साथ फरमाया बड़ा जल ईमानो कुल लहू।
अब आप क्या कहेंगे, मैंने आपके सामने जब सूरह हज की आयात पढ़ी, इन्नल्लाह युदाफियो अनल्लज़ीन आमनू, अल्लाह मोमिनों का दफा करने की भरपूर कुव्वत रखता है, है? वह मोमिनों के दफा की बात थी, और यहाँ पैगंबर ने क्या कहा, बरजुल ईमानो कुल लहू, अरे कुल ईमान है, अब खुदा के अलावा इनका दफा कौन करेगा? करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, करेंगे दफा। मोमिन तो बनो, तो मोमिन ही ना बन पाए आप, तो वहां कहा बरजुल ईमान कुल लहू। ये हो गए खंदक खत्म, बाकी तस्करे करने की हमें जरूरत नहीं।
अब ये है इस्लाम का जहाज। मुझे बताओ मेरे दोस्तों, इसके अंदर कहां है टेरिटरी की एक्सपेंशन, कहां है लूट मार की दौलत,
कहां बनाई गई कमीजें और गुलाम, कहां लगी इंसानों की मंडियां, यहां क्या था कामत सलाह, इलाही सलाह, अमल भी मालूम नहीं अली मिलता है, बरअसल ईमान, यही बातें थी इसे कहते हैं इस्लाम का।
अब मुसलमानों ने क्या किया, हम बहुत दूर रह जाएंगे, बिल्कुल गरीब की बात करेंगे और झूठी तारीफ से चल और आप सामने बैठते हैं, वो जहाज था ये फसाद था, इस्लाम का था या बनी उमैया का था, बनी अब्बास का था। एक जुमला है बड़ा वेश का, हर किताब में लिखा हुआ है, और मुसलमानों की कंटेम्प्ररी जो अपने आप को दीन के स्कॉलर्स कहते हैं, जिसमें मौदूदी सैयद कुतुब नामी ग्रामी लोग हैं, तो जुमला कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल जाता है। ओवर यूज, ओवर सिंप्लीफाइड, इंतहाई वेग जुमला, इबहाम का शिकार ना कोई सारे ना पैर। इस्लाम मुकम्मल जाता है ना, क्या मतलब इस बात का, इसका जाता और जाता कौन मुकदर करेगा, किसका जाता, किसकी हयात। आपको कहते हैं उसकी भी अच्छी, उसकी भी अच्छी, उसकी भी अच्छी, हजार की भी अच्छी, मरवान की भी अच्छी, मामून की भी अच्छी, हारून की भी अच्छी, हलाकों की भी अच्छी, महमूद गजनवी भी गाजी, मोहम्मद गौरी भी गाजी।
इस्लाम एक मुकम्मल जाता है, इससे ज्यादा धोखे पर नौकरी कोई मिला नहीं, इसलिए कोई आपके पास, आप बताए ना कौन इस जाते हैं आपके की जो पैरामीटर्स कौन बताएगा, क्योंकि रसूल पर तो आपको एतबार है ही, रसूल जो कहा वो तो आपने माना ही नहीं, वरना तो ये गदीरी मान ले, तो आप कौन एक्सप्लेन करेगा कि इस्लाम का जाता है, इस्लाम मुकम्मल जाता है। ओवर यूज, ओवर सिंप्लीफाई, देख बहकाने वाला जुमला। अच्छा हद ये है कि मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर इस्लाम को पलूट किया, जैसे पानी के अंदर आप भलासा डालो तो पानी पलूट हो जाता है ना, इस तरह अपने मफादात के लिए इस्लाम के अंदर चीजें लिख रही दाखिल करके उसे पलूट किया, खेत को पलूट, और इसके बाद टेरिटोरियल एक्सपेंशन, बैटल हंगरी, अव्वलीन दौर के मुसलमानों के अंदर भी अव्वलीन पीरियड शुरू के चंद साल भी पहले रहने से पैगंबर के बाद वो बहुत ज्यादा जंग की तरफ रगबत थी, ताकि बड़े बड़े इलाके हाथ आए, बहुत ज्यादा मालो दौलत खाता है, और ईरान से आ चुका था मालो दौलत, उसके बाद फिर वो ग्रीड बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। हम जिस खत्ते में रहते हैं उसके लिए कहा जाता है कि 712 ईस्वी में वाया बाबुल इस्लाम बना सिंध और मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम के दरवाजे जमीन को खोल। ये तारीफ का इतना बड़ा झूठ है जो अब आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रहा है। कोई इस्लाम के नाम पर सिंध नहीं आया था। हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद वलीद बिन अब्दुल मलिक का रिप्रेजेंटेटिव बनी उमैया के बदतरीन खुखार लोगों का जर्नल सिंध इसलिए आया था कि ये एंशियंट सिल्क रूट से बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर था। आज आप लोग समझ रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर कर ली थी इकोनॉमिक कॉरिडोर की फिक्र की ना माल था दौलत थी हिंदुओं के मंदिर थे जिसमें सोने की मूर्तियां थी मालो दौलत था। मैं मुख्तसर चंद जुमलों में बताऊं ये कितना बड़ा जुर्म हुआ। अगर ये इस्लाम होता तो कुछ और होता। जब घेरा डाल दिया ना दीवल और राजा दाहिर के फोर्स पर तो उन्होंने सुलासी दरखास्त की। इस्लाम का जहाद कौन सी जंग है अगर कोई तुमसे लड़ने के लिए आए अगर कोई हद से तजावुज करे अगर कोई इस्लाम के राह में हंकावा डाले अगर कोई कमजोर मर्दों औरतों और बच्चों को होश से बनाए यही है ना उसके अलावा नहीं मिला। उन्होंने अंदर से कहा कि हम सुलह करना चाहते हैं। सुलह की दावत दी बार बार बैक किया क्योंकि उनके पास वो वेपनरी नहीं थी जो इन तारीख के मुजरिमों के पास थी। मोहम्मद बिन खासिम ने सिंपल वर्ड में जवाब दिया मेरे अमीर का हुक्म है कि एक भी जिंदा न छोड़ा जाए और ऐसी स्लॉटरिंग हुई 3 दिन तक कंटिन्यूअस स्लॉटरिंग 6,000 मर्द पहला दिन 3 फर्स्ट डे 700 औरतों को कैप्टिव बनाकर फौजियों में पाटा 30 राजा दाहिर के खानदान की रॉयल फैमिली की बच्चियों को वलीद बिन अब्दुल मलिक और हज्जाज के ईद को फतन भिजवाया गया। ये बाबुल इस्लाम खुल रहा था। उसके बाद जब ब्राह्मणाबाद पर आए बदतरीन स्लॉटरिंग का तारीख कहती कम से कम 26,000 आदमी आप उसे कहते हैं इस्लाम। आप उसे कहते हैं उसी दिन पाकिस्तान बन गया था जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने ये इस्लाम का दरवाजा या कत्लो गारत गुरी का दरवाजा खोला। शर्म आनी चाहिए ऐसे स्टेटमेंट्स ये सारे स्टेटमेंट्स किसी न किसी माशी और माली ममादात के तहत दिए जाते हैं। वहां कत्ल व गारत गिरी का बाजार गर्म हो गया यहां कहते हैं बाबुल इस्लाम उसी दिन पाकिस्तान बन गया था। काश उस दिन न बनता किसी और दिन बनता तो शायद यहां ये कत्ल व गारत गिरी न बनता किसी अच्छे दिन बनता। अगर उस दिन बना था पाकिस्तान तो किसी और दिन बन जाता क्योंकि बुरे दिन का बुरा असर होता है अच्छे दिन का अच्छा असर होता है। फिर क्या हुआ उस इस्लाम के अजीम हीरो के साथ। चलिए देखो हम मुसलमान लोग हमें हीरो वर्शिप हमें भी कहते हैं ना आप बड़े प्राइमो जेनेटर हैं बाप के बाद बेटा बेटे के बाद बेटा बेटे के बाद बेटा बेटे के बाद बेटा हम यही कहते हैं ना वाली में उनका बेटा फिर उनका बेटा हमें फकर है उस हीरो वर्शिप वो हीरो तो हो इंसान इंसानियत का तारीख का शराफत का अदालत का शजाअत का हीरो तो इस हीरो के साथ क्या हुआ जिसने बाबुल इस्लाम खोल दिया वहां से वलीद की हुकूमत का तख्ता उल्टा भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बैठा उसने हजार को महसूस किया कहा बोला उसके भतीजे नाना बात तारीख में कहती है बदतरीन का चल बाद कहते हैं लोमड़ी की खाल में बंद किया गया दून के पास इसका मुंह बाहर निकाला गया और ऐसी विभिन्न इससे वो अजीम बनी मैया का जर्नल अपने इख्तिताम को पहुंचा। अभी हुआ कहां मुसल रात, चलो चले मुसल रात, देखें कहीं उनकी कोई खबर हो, कहीं उनका कोई निशान हो, कहीं उनका कोई नाम हो। हाय कैसे हो सूरह कौसर ना कुरान से गायब हो जाए। अगर काफिरों के नाम रह जाए, उनके निशान बाकी रह जाए, तो सूरह कौसर ना कुरान से गायब हो जाए। इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले ले रब का फनहर, इन्ना शानिया का हुवल अफ़सर, तुम्हें हमने अबंडेंस दी। अंग्रेजों ने जब इसका तर्जुमा लिखा तो वहां कौसर कसीर, कह रहे नहीं बड़ा कंजूस है मुसलमान, इसका मतलब कसीर नहीं है, अबंडेंस का नहीं, सुपर अबंडेंस का नहीं, सुपर 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 लेटिव अबंडेंस। नेमत के हवाले से जहन में तुम्हारे तकब्बुर हो, उड़ न जाती हो सूरत कुरान से। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, यकीन रखो तुम्हारा दुश्मन बेनाम और निशान हो। और जाहिर आज भी तारीख इज्जत से उसका नाम लेती है, इसलिए कि उसने सादा से अलविया को अपने उन कोर्ट में पनाह दी। वो हजार के जुल्म से भागे हुए सादात को बचाता था, उन्हें छुपाता था, उनको मराज फराहम करता था। आज तारीख ने पैगरा बदला तो लोगों ने कहा ताहिर हमारा हीरो है, मोहम्मद बिन कासिम हमारा मुजरे है। ये सच्चाई, ये सच्चाई। अच्छा मेरे दोस्तों, हुआ क्या तारीख में? हुआ ये कि फिर क्राउन और क्लर्जी, ये मौलवी और ये बादशाह, ये मिल गए। और फिर इन्होंने पत्रे, ये पत्रों की तारीफ वहीं से चली, पत्रे देने लगे। अब अगर पत्रा ना दे मौलवी तो बादशाह किसी के टांग काट दे, किसी के हाथ काट दे, किसी की आंखों में सलाइयां फिरवा दे, किसी को फांसी चढ़वा दे, बड़े बड़े उलमा। इस तरह उनकी भीड़ चढ़ गई तो लोग बौखजदा हो गए, हर एक अबू तालिब के घर में नहीं पैदा हुआ था, हर एक अबू तालिब के घर में नहीं पैदा हुआ था, केवल बैठ जाता। डर गए लोग, कहा किस पर चाहो लाओ फतवा, लाओ कहां पर मोहर। फिर फतवों का बाजार गर्म हुआ और उसके बाद मुसलमानों की रियासत पर रियासत पड़ती चली गई। हाय फतवे का बाजार, जब फतवे का जिक्र आया तो मुझे एक और फतवा याद आया, जब यजीद ने फतवे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जमा किया मौलवियों को, तो कहा हाँ फतवा, हुसैन को कबूल किया जा सकता है, इसलिए तुम हुकूमत के खिलाफ बगावत करो। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बगावत के लिए ना उतर पड़े, बगावत थी जहाद के लिए ना उतर पड़े होते, कयामत तक के लिए कोई जालिम और जाबिर के खिलाफ उतर नहीं खड़ा होता, नहीं खड़ा होता। और हुकूमतों पर लेजिटिमेट मान निकल गए हुसैन इब्न अली शेर अली तालिब की खाड़ी से, हज को उम्रे के तब्दील करते हुए, हज को शहादत की बुलंद मंजिल पर पहुंचाते हुए, सहरा का सफर तय करते हुए मंजरे इराक की जानिब हुसैन इब्न अली बढ़ रहे हैं। रास्ते में खबर आई आपका कासिद अब्दुल्ला इब्ने यक्तर कत्ल कर दिया गया। हुसैन काफिले को रोक दे, नहीं काफिला आगे बढ़ा। फिर खबर आई आपका कासिद कैस बिन मसर सैलावी कत्ल हो गया, काफिला बढ़ रहा है। फिर खबर आई मुस्लिम इब्न अकील कत्ल कर दिए गए थे। हाय हुसैन, थोड़ी देर के लिए सवारियों को बिठा दीजिए, मुस्लिम की बीवी जो आपकी बहन है, हाय बहन का घर उजड़ गया, बच्ची को पास बुलाकर सर पर हाथ जब रखा तो घबरा कर पूछा, चाचा मेरे बाबा की तो खैर है ना? बस फिर आगे बढ़े, मंजिल हमारी इराक है। अल्लाह अकबर, जू हसम की पहाड़ियों पर हुसैन इब्न अली ने सामने से लश्कर आते हुए देखा, पहाड़ियों के पीछे बीवियों की सवारियां की, तलवारों को निकाल लिया। अब जो सामने आता हुआ लश्कर देखा तो पानी से जाम बलक था, 2000 आदमी सवार और सवारियों की जबानें बाहर निकली हुई थी। तलवार को नियाम में रखकर कहा, अब्बास लश्करों के दहाने खोलो। लोग जो आपके साथ थे उन्होंने कहा, फजल रसूल दूर दूर तक पानी की कोई सबूत नहीं है, कोई चश्मा नहीं है, आपके साथ बच्चे हैं, इतना पानी न दीजिए। हम काफी अफसर के नवाते खोलो खोलो, खुल गई मशकों के दहाने खुल गए। फिर लोग पानी पी रहे हैं, फिर कह रहे हैं, हुसैन देखो जानवर के सामने 3 मरतबा कष्ट रखना, वो एक दफा में पानी नहीं पीता। हाय अली अकबर की प्यास, हाय अली अकबर की प्यास, हाय अब्बास का उस दरिया में उतरना, हाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उस सूखा गले का बटका। कहा 3 बार कष्ट रखो, घोड़ा एक दफा में पानी नहीं पीता। पानी पिला चुके, उनकी आंखें झुक गई। अब जोहर की घोष ने पीछे पड़ ली, असर की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ ली। अब काफिला आगे आगे चल रहा है और साथ साथ अपने लश्कर को थोड़े फासले बंद कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ चल रहा है। एक बदतरी सा कासिद आया, घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने से गुजार कर गया। सलाम करना मुनासिब न समझा उसने वक्त के इमाम को और जाकर घोर को कहा, इब्ने ज़ियाद का हुक्म है, जहाँ हुसैन इब्ने अली वहाँ पर खेल। इमाम ने आया और कहा, फजल रसूल मुझे हुक्म है कि यहीं पर आपकी सवारी को ठहरा दिया जाए। आपने कहा, नहीं मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा, मैं आगे सफर तय करूंगा। ये तय कर इमाम आगे चल, सवारी आगे बढ़ और फिर मजा ही हुआ। उसका फजल रसूल मेरे साथ ये कासिद है और ये अपने ज्ञान को खबर देगा, लिहाजा आप यहाँ पर रुक जाइए। उन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी बात को तवज्जो न दी और आप सवारी को उसी तरह आगे बढ़ा के चले गए। अब हुर की एंग्जाइटी, उधर कासिद साथ साथ है, इतने ज्यादा हुक्म है। उन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी आगे बढ़ी, हुर ने बढ़कर लेजा में फर्श पर हाथ रख दिया और कहा, बस फातिमा की जजाओं में परत पर हार डाला और वो जला ले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इसके जजाओं में परत को पकड़ा तुमने। यसरे आशूर नहीं है जो मैं गर्दन झुका लू, किसकी जगह में परत पर तुमने हाथ रखा? अली का बेटा है, ये अबू तालिब का पोता है, ये जाफर का भतीजा है, ये फातिमा का लाल है। जनाब उसका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और आपने गैस के आलम में कहा, तेरी माँ तेरे घर में रोए। इतना नालायक बेटा पैदा किया जो फरजंदे नदी की निजामे फर्श को कहां गए उनके हाथ में। फरजंदे रसूल मेरी मजबूरी देखिए, कहा आगे बढ़े, हट गया वो पीछे अली आगे बढ़ते चले गए। यहाँ तक कि एक मकाम ऐसा आया खुद बहुत आपकी सवारी रुक गई, सवारी रुकी, आपने आगे बढ़ाना चाहा ना पड़ी। मकाते लेते हैं आपने दूसरी सवारी ली, वो भी नहीं ली, तीसरी ली, नहीं पड़ी, सात घोड़े बदली कर दिए, नहीं पड़ी। आपने अपने साथियों से पूछा इस जमीन का नाम क्या है, अरे सबने मोहम्मद की हदीस सुन रखी, मेरा लाल करबला के दर्शन में दर्शन किया जाएगा। सब चाहते थे जल्दी से वह जमीन पर से गुजर जाए, कहा मौला इसे हासरिया कहते हैं, कहा कोई और नाम भी तो होगा, कहा मौला इसे नैनवा कहते हैं, कहा कोई और नाम भी तो होगा, कहा मौला इसे नासरिया कहते हैं, कहा और नाम भी तो होगा। अरे जितने नाम लोगों को याद थे सारे सुना दिए, पूछा कोई और नाम बाकी रह गया, तो कहा हाँ इसे करबला कहते हैं। दूसरी महाराम हुसैन इब्न अली वालिदे करबला हो गए, घोड़े से उतर आए, कहा अच्छा क्या यही करबला की मंजिल है, खुदा की कसम यही मेरी फजलगाह है, खुदा की कसम यही मेरी हसक हुरमत होगी, यही मेरे बच्चों का खून बहाया जाएगा। और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में हाथों को बदल कर कहा परवरदिगार अब अपने वादे की तकमील के लिए अपनी बारगाह में पहुंच चुका है, मेरे मालिक बहुत सारे हम रंगो ऐसे होते हैं जिनके बर्दाश्त करने से दिल टूट जाते हैं, हिम्मतें जवाब दे जाती हैं, दोस्त साथ छोड़ देते हैं, दुश्मन ताना तनी करते हैं, मैं अपने तमाम उमूर को तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर जनाबे अब्बास से कहा अब्बास जहाँ जगह मुनासिब देखो वहाँ खैमे लगा दो। शेर को तराई पसंद आई, दरिया के किनारे खैमे लगने लगे, कहा जमीन के मालिकों को बुलाओ, बनी असर के लोग बुला लिए गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा हम इस जमीन को खरीदना चाहते हैं, इसकी कीमत बयान करो। उन्होंने हाथों को जोड़ कर कहा फरजंदे रसूल जितने दिन चाहे रहे, अरे ये जमीन किसी नबी नबी जादे को लाश नहीं आई, बस जितने दिन चाहते हैं रहिए, खैर सलामत से जाइए। इमाम पे इतराज किया मैं खरीदना चाहता हूँ, उनके इंतजार के बावजूद भी जमीन का सौदा तय हुआ, जमीन का खबारा डाल दिया गया। इमाम हुसैन ने 60,000 दीनार करबला की जमीन की कीमत मालिकों को दे दी। उसके बाद खिताब किया और कहा अगर इस बैठ के बना में तुम्हें मेरी और मेरे बच्चों की बिखरी हुई लाशें नजर आए,
Oh! Thank you.